أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اے چادر لپیٹ کر سونے والے، اٹھئے رات کی کچھ گھڑیوں میں، تھوڑا ہی وقت، اس کا نصف یا اس میں سے بھی کچھ کم یا اس کو زیادہ کر لیجئے. اور رات کی ان گھڑیوں میں کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر، آرام آرام سے، جس سے یہ قرآن آپ کے سینے میں جائے اور پھر اس کے اندر ایمان کا پودا لگے. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہہ دیا؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ کے اوپر ایک بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں. اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، بے شک رات کو اٹھنا یا رات کو جاگنا نفس پہ بہت ہی بوجھل ہوتا ہے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ وَأَقْوَمُ قِيلًا. بات بڑی سیدھی نکلتی ہے، یعنی جو رات کو اللہ تعالیٰ سے بات کر لیتا ہے، دن میں اس کی بات لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتی ہے. رات کو اٹھ کر کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ ان نلکفن نہاری سب ہنتے بیلا، بے شک آپ کے لیے دن کی گھڑیوں میں بہت ساری مصروفیات ہیں. تو بس قرص ماربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر کٹنا. سورت مزمل آپ میں سے بہت ساری سسٹرز کو زبانی یاد ہوگی، اللہ کے حکم سے بالکل ابتدائی دور کی وہی میں سے وہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ کی گلیوں میں ایک عام شخص کی طرح تھے، لیکن آپ کا کردار تب بھی بڑا خوبصورت تھا. جوانی میں جو عموماً مشغلے ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا. باپ دادا کے کلچر اور رسم و رواج کی جو جھلکیاں ہوتی ہیں انسانوں کی زندگی میں، اللہ نے آپ کو اس سے بھی دور رکھا. لیکن جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچی، تو آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے مطابق اور بھی بہت سارے لوگ، کہ آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ کا ذکر، آپ کا خشوع اور خضوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا، مزید ہو گیا. آپ اپنے گھر سے نکل کر غار حرا، جو آج بھی اگر آپ میں سے کوئی جا کر دیکھے تو مکہ میں حرم سے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کے دور ہوگی، وہاں پہ جاتے اور اللہ کو یاد کرتے. یاد رکھیے کہ اس وقت نماز کی کوئی مروجہ صورت نہیں تھی، قرآن تو بھی نازل نہیں ہوا، کچھ بھی تو نہیں تھا. عربوں نے دین کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا تھا. اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چننا تھا، تو یہ بھی اس سے پہلے کی تیاریاں تھیں. آپ وہاں جا کر غور و فکر کرتے، علماء کرام اس پہ بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہاں جا کے کرتے کیا ہوں گے، لیکن نماز تو بھی اس طریقے سے نازل نہیں ہوئی. اور اگر آپ سورۃ الاعراف کھولیں تو مکہ والوں نے نماز کا حلیہ جو بگاڑا ہوا تھا، وہ تو تالیاں بجانا تھا اور سیٹیاں بجاتے تھے. حج کو انہوں نے ایک رسم بنا دیا تھا اور باقی کاموں کو بھی اپنی مرضی سے کر لیا تھا. قرآن نازل نہیں ہوا. ہم تو عبادت کے نام پہ یہی کرتے ہیں نا، یا نماز پڑھ لے، نفل پڑھ لے، عبادت کر لے، ذکر کر لے، اذکار کر لے. اس میں سے تو بھی کسی چیز کی کوئی شکل بنی نہیں تھی. پہلے سے جو چل رہی تھی چیزیں وہ چل رہی تھیں. تو پھر آپ غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ اصل جو بات ہے جس پہ آج بات کرنا چاہوں گی، ہم سوچتے ہیں قرآن لفظوں کے حفظ کرنے کا نام ہے، یعنی حفظ قرآن قرآن کو لفظوں کے ساتھ یاد کرنے کا نام ہے. حالانکہ یہ بھی ہے، آف کورس یہ تو ہے ہی، لیکن اصل میں قرآن کو سینے میں ڈالنا تاکہ جب بھی موقع ملے، جب بھی وقت پڑے، تو آپ اس کو استعمال کر سکیں. آپ کے پرس میں اس وقت کتنے پیسے ہیں اور میرے کتنے ہیں؟ نہ آپ کو میرا پتہ ہے، نہ مجھے آپ کا پتہ ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن ہم جب کہیں بھی باہر نکلتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں، क्यों? हम अपने पर्स में पैसे इसलिए रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े उसको इस्तेमाल कर लें। खाना लेना पड़ा तो खाना ले लेंगे, गैस पेट्रोल कुछ भी लेना पड़ा। अगर आपके पर्स में पैसे हो ही ना तो उससे खरीदेंगे कैसे? उसका एक सूरत है, किसी दूसरे से मांगेंगे, कोई आपके साथ बैठा हुआ वो दे देगा। आप अपने ऊपर लेकर सोचिए, आपको अपने लिए कौन सा तरीका अच्छा लगता? पहला, हम में से कोई गवारा ही नहीं करता कि कोई 10 रुपए भी हमारी जात पे लगाए ये सोच के कि इसके पास नहीं है। वैसे तो जिंदगी में हम दूसरों से लेते देते रहते हैं ना एक दूसरे के साथ, लेकिन हमें ये अच्छा नहीं लगता कि हम उधार लें या कोई हम पे रहम खाए। बस अब आ जाइए इसको कुरान पे। कुरान को हिफ्ज करना, अपने दिल के बटवे में कुरान को डालना है। जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कुरान से रहनुमाई की, कोई गाइडलाइन लेने की, कोई आयत, कोई बात, कोई रब की बात, कोई हुक्म की बात, कोई खशियत की बात, तो मैं अपने दिल का बटवा खोल के वो आयत से गाइडलाइन ले लूँगा। ये जो दूसरी मिसाल थी ना, दूसरे से उधार लेना और दूसरा आपके ऊपर रहम खा दे, ये है हमारा वो तरीक़ाकार जो हम वक्त पढ़ने पे दूसरे दीनदारों को अपने से ज़्यादा इल्म वाला समझकर सवाल पूछते हैं। रमज़ान आता, हम रमज़ान से पहले रमज़ान के मसले पूछना शुरू हो जाते हैं। ऐन रमज़ान के दौरान हर वक्त क्वेश्चंस होते हैं, रोज़ा टूटा के नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ज़कात का मौसम आता है तो लोग ज़कात के सवाल पूछते हैं। हज उमरे पे गए हुए बहुत सारे लोग जो आजकल व्हाट्सएप के थ्रू वहीं बैठे बैठे मैसेज करके अपना मसला पूछते हैं, क्यों भाई? आप खुद नहीं लेना चाहते? लेकिन ना कभी कभार तो बंदा उधार ले ले, कोई बात नहीं है, जायज़ है, हलाल है, कर्ज भी ले सकते हैं, लेकिन हर वक्त की ये बात है? अल्लाह सुभाना ताला ने इसका बेहतरीन तरीका क्या रखा? अल्लाह के नबी की बात पे वापस आ जाइए। आप गारे हिरा में रहते, उलमाए कराम कहते हैं कि आपकी गारे हिरा में इबादत तफक्कुर की थी, गौर फिक्र की थी। इन नफी खल्क समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ अल-लैल वन-नहारि लायातिन लिउलिल अल्बाब। आप वहाँ बैठकर अल्लाह के बारे में सोचते थे, मारफत, अल्लाह कौन है, मेरा रब कौन है, इसने दुनिया क्यों बनाई। और आप याद रखिए कि हमें से हर इंसान के जहन में ये सवाल उठता है। छोटा बच्चा भी पूछता है, मामा अल्लाह किधर है, हम किधर से आए, हम किधर जाएंगे, मरने के बाद क्या होगा, करते हैं ना सवाल। ये इंसान की फितरत में है। अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक को इन सारे सवालों का जवाब बनाकर पेश किया। तो जब पहली वही आई आपके ऊपर, आप इसी तरह की रियाजत में मगन थे और अल्लाह ताला ने अपना फरिश्ता भेजा, सभी ने वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, आयतें सुनी हुई हैं। क्या कैफियत हुई थी वो भी आपने कई दफ़ा पढ़ा सुना होगा। आप कांपने लगे, आपके दिल पे एक खौफ था, एक खशियत थी कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, क्योंकि एक नया तजुर्बा था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको भींचा, आपके दिल को सुकून मिला। वो कह रहे थे इकरा, तो अल्लाह के नबी जिब्राइल के पीछे नहीं पढ़ पा रहे थे, और कहने वालों ने कहा कि अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अल्लाह के नबी पढ़ते तो फिर जिब्राइल आपके उस्ताद बन जाते, तो फिर उनके हक अदा करना, उनकी खिदमत में ही आपकी ज़िंदगी गुजर जाती। लेकिन अल्लाह ने खुद ब खुद आपकी ज़ुबान पर आयतें नाजिल कर दी कि पहले तो आप कहते रहे वमा अना बिकारियन, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। जैसे आप में से किसी को कहे क्या ये 10 सूरत मोमिन सुनाइए, तो आप कह देंगे कि मैं नहीं पढ़ी हुई, मैंने कुरान ज़ुबानी नहीं याद किया हुआ। देख के आप सुना लेंगे अगर आपने पढ़ा हुआ तो। खैर, किस्सा मुख्तसर हुआ क्या कि पहली वही उतरी। आप ऐसे इसको इमेजिनेशन में लाइए कि वो पहला दिन जिस दिन आपने कुरान को हिफ्ज करने या सीखने की नीयत की। अब ये बच्चियाँ जो हमारे साथ बैठी हैं, जिनके सीनों में कुरान गया, यकीनन ये हम सब में से बहुत सारों से बहुत बेहतर हैं इस वक्त, क्योंकि हाफिज़े कुरान और उसके वालदैन और उसके उस्तादों के फ़ज़ाइल तो आप हमेशा ही सुनते हैं। आप कहेंगे तो मैं भी आपको सुना दूंगी, मज़ा तो हमें फ़ज़ाइल में ही आता है। लेकिन फजीलतें सुन सुना कर अपने ही ज़ोम में ख़ुद को बड़ा समझ कर उठ के चले जाना, वो तो इस महफिल का हक अदा नहीं कराएगा ना। महफिल का हक कब अदा होगा کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ حافظ قرآن ہوتا کون ہے، تحفظ قرآن کون کرے گا، اور آخر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، تو وہ آپ کو ان آیتوں سے انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ اللہ کے نبی کے اوپر جو پہلی آیتیں اتری وہ اقرأ باسم ربک تھی، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. ہم کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ کیا پڑھیں گے، قرآن ہی پڑھیں گے نا؟ نہیں. ہر وہ علم جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے، معرفت. آپ کو سائنس پڑھ کر اللہ کی محبت ملتی ہے کہ اللہ نے کیسی پیاری دنیا بنائی، سورج چاند ستارے، آپ اس کو دیکھ کر مگن ہو جاتے ہیں، یہ بھی آپ کی عبادت ہے، یہ بھی بسم ربی کا ہے. آپ جغرافی پڑھتے ہیں، آپ دنیا کے نقشے پہ غور کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بہت سبحان اللہ، اللہ تو نے کیا کچھ بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہے نا؟ تو کوئی علم بھی یاد رکھے سیکولر نہیں ہوتا. اگر میں نے اردو نہ سیکھی ہوتی، اگر مجھے انگلش سمجھ نہ آتی، تو میں ہو سکتا ہے آج آپ کے سامنے اردو میں یہ بات نہ کر سکتی. اگر میں نے میتھ نہ پڑھا ہوتا تو میں وراثت کے مسائل کیسے ساتھیوں کو سمجھاتی. تو آپ سب لوگ جو بچے بھی خاص طور پہ دوسرے علوم لے رہے ہیں، یہ کوئی وقت کا ضیاع نہیں ہے. لیکن ہمارے کلچر میں ابھی ایک پرابلم آ گیا ہے، چار بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ بنا دیتے ہیں. کیوں؟ کچھ آخرت بن جائے، اور پھر اس کو پھوپھیاں مامیاں چاچیاں خالائیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں، وہاں جا کے ہمیں نہ بھول جانا. میں نے ایسا دیکھا ایک موقع پہ، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، کہنے لگی کہ وہ 70 لوگوں کی سفارش کروائے گا حافظ قرآن، ہے حدیث، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں اس کو کہہ رہی ہوں بات سن، مجھے وہاں بھولنا نہیں. اسی طرح ماں باپ کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا، یہ حدیث بھلا آپ نے نہیں سنی بھی، اور صاحب قرآن کی اس دن بڑی شان ہوگی. لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن اصل بات ہے کہ حفظ قرآن کیا ہے. آپ اپنے نوٹ کہاں رکھتے ہیں، اپنا گولڈ کہاں رکھتے ہیں، چھپا کے، کیونکہ آپ کو قیمتی لگتا ہے. چھریاں پلیٹیں چمچے کہاں رکھتے ہیں، کچن میں. ایک تو یہ کہ وہ بہت قیمتی نہیں لگتی، دوسری کیا وجہ، ہر وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے. اب ذرا سا غور سے سمجھیے گا، جس چیز کو ہر وقت استعمال کرنا ہوتا ہے نا، وہ لاکروں میں جا کے نہیں رکھی جاتی، ہر دفعہ ڈبے سے مشین نکال کر نہیں کھولتے کہ اب ذرا اس کے اندر کچھ چیزیں پیس لوں اور بعد میں اس کو واپس رکھوں، وہ تو ہینڈی ہوتی ہیں. سوال کرتے ہیں خود سے، کیا میرا قرآن کے ساتھ تعلق لاکر میں رکھنے والا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، یہ کیفیت ہے، یا پھر یہ قرآن میرے لیے ہینڈ بک ہے؟ ڈرائیونگ کرتی ہوں گی آپ میں سے کچھ سسٹرز، نہیں کرتی تو سارا دن گاڑیوں میں بیٹھتے اٹھتے تو ہم ہیں ہی ہیں نا. ڈرائیور کو اگر گاڑی چلانا پریکٹیکلی نہ آتا ہو، صرف اس نے اس کتاب کے لفظوں کو یاد کیا ہو کہ جن کو دیکھ کر پڑھ کر وہ گاڑی چلانا سیکھ چکا، تو مجھے بتائیے کتنے حادثے ہوں. اصل تو پریکٹس کا نام ہے نا. اب ان بچوں نے قرآن سیکھا، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھلا کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہ بلانے دے. لیکن یاد رکھیے کہ ان نعمتوں کے ساتھ آزمائش بھی ہے. کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. حضرت یوسف کو حسن ملا، حسد کی وجہ بن گیا، محبت ملی، محبت وجہ بن گئی. تو جب قرآن جیسی خوبصورت دولت آپ کو مجھے ملتی ہے، تو ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ پہلی بات دیکھیے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اب یہ چند باتیں صرف ان کے لیے نہیں ہیں، ہم سب کے لیے بھی ہیں. کچھ نہ کچھ حصہ لفظوں کا تو ہمیں بھی یاد ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ صرف عربک کے لفظوں کو حفظ کہتے ہیں، یا اگر آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں اپنی زبان میں تو وہ بھی حفظ ہے؟ کتنے لوگ لفظی ترجمے کو یاد کرنے کو بھی حفظ قرآن کہتے ہیں؟ میں کہتی ہوں سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کس میں کیا یوز کرنا. میرا گمان ہے کہ ان بچیوں نے تو بھی لفظی ترجمہ نہیں یاد کیا ہوگا، نہیں کیا ہونا بیٹا. میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ نے سورت مومن پڑھی، یاد ہے؟ آپ میں سے کوئی سنانا چاہے گا شروع اس کا، بگننگ کی دو تین آیتیں؟ شروع سورت کا اس لیے بولا ہے کہ بیچ میں سے سنانا مشکل ہوتا ہے. الرحمن آتی ہے، پہلی آیت سنائے سورہ الرحمن کی، سبھی بول دیں. شاباش، جزاک اللہ. کیا کہا ہے اس میں انہوں نے، آپ میں سے کوئی بھی بتائے اس کا مطلب کیا بیٹا، آپ بتائیں، آپ بتا دیں. जिसको आता है वो बता दे, जिसको नहीं आता वो डोंट वरी। जी आगे, जिसने कुरान सिखाया। अब आप देखिए कि रहमान अल्लाम अल कुरान कितनी मारूफ है ना। पहला जुमला हमें क्या बता रहा है, मगर इसके दो तीन जुमलों में वजाहत कर दूं। अर रहमान अल्लाह का नाम, अल्लाम अल कुरान जिसने कुरान सिखाया। मुफस्सरीन कहते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह का सबसे बड़ा रहम क्या है कि उसने इंसानों को कुरान सिखा दिया। आप मुझे बताइए कि जिसके सीने में माशाल्लाह कुरान की अरबी है, अगर वो इसका तर्जुमा भी याद कर लें तो कोई इनको बीट कर सकता है? आपके तो बेटा नामे अमाल अभी आपके स्काफ्स की तरह सफ़ेद है इंशाल्लाह। अभी नई नई बालिग हुई लगती हैं बच्चियाँ, ऐसे ही है ना, इसको मैला नहीं करना। और मेरा ख्याल है 3 साल से तो ज़ायद लगे ही होंगे ना हिफ्ज करने में। कितने साल में वह? 3 लगते हैं, मोस्टली 3 साल लगते हैं अगर आप करें तो। अब सिर्फ आप 2 साल की नीयत कर लें, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक रुकू, 500 कुछ रुकू हैं कुरान पाक के, एक रुकू का लफ्जी तर्जुमा। तो मैं आपको एक छोटा सा बना के स्केड्यूल दे सकती हूँ कि आप अब इन बच्चियों को ख़ास तौर पे और आपके स्कूल की बाकी बच्चियों को आम तौर पे 2 सालों में लफ्जी तर्जुमा कैसे सिखा सकते हैं। ये हिफ्स मुश्किल है जो हमने अब कर लिया। लफ्ज़ों के बाद जो अरबी से उर्दू का हिफ्स है ना, वो बहुत आसान है। इनके लिए तो आप समझिए कि लफ्जी तर्जुमा इतना आसान हो जाएगा। और जो ख़तरा लगा रहता है ना कि कुरान इनको भूल ना जाए, तो उसको महफूज करने का ज़रिया है कि आप इसको अपनी ज़ुबान में समझने लगे। जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो पहली बात यह कि अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। वो क्या है कि अल्लाह ने अपनी किताब आपके सीने में डाल दी, इस पर शुक्र कीजिए। आप किस को अपनी चीज़ देते हैं? जिस पर आपका ट्रस्ट होता है, एतमाद है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा कि आप उसके किताब को रख ले। आप हर एक को दे देंगे अपनी कीमती चीज़? एक माँ अपना बच्चा हर एक को पकड़ा देती है, ज़रा इसको होल्ड करो, ये मेरा ज़रा सोने का एक सेट है, इसको कहीं रख लो। नहीं रखते ना। अल्लाह का शुक्र है कि वो किताब जिसके एक एक लफ्ज़ को पढ़ने पर 10-10 नेकियाँ मिलती हैं, अल्लाह ने वो आपको दे दी। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है कि कुरान के एक लफ्ज़ पर 10 नेकियाँ। और आज तो लफ्ज़ भी गिने हुए। अगर आपने एक रुकू को 10-10 दफ़ा भी पढ़ के याद किया है तो मिलियन एंड ट्रिलियंस नेकियां तो आप पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, अब करना क्या है? इसकी हिफाजत करनी है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि कुरान पढ़ने वाला कल क़यामत के दिन माँ किरामिल बरारा माहिर फरिश्तों के साथ होगा। अब आप सोचिए, वो किताब जिसको खूबसूरत तरीके से पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला कान लगा कर सुनते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। आप जब कुरान पढ़ा करें ना, कभी भी अपना दौर करती हैं दोहराती हैं, उस वक्त इस बात को याद रखिएगा कि इस वक्त अल्लाह ताला भी मेरे इस कुरान को सुन रहे हैं। और बुखारी की रिवायत है कि ये वो किताब है कि जिसको पढ़ने वाले और जिसको पढ़ाने वाले दुनिया में बेहतरीन लोग हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तो कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने आपको कुरान दिया। मुसनद अहमद की रिवायत है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बुलाएंगे हामिल कुरान को और कहेंगे कि इक़रा वरका, पढ़ और ऊपर चढ़। पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा, जितनी आयतें उसको याद होंगी वो वहाँ पहुँचेगा, हत्ता के जन्नत के उन दर्जों पे पहुँच जाएगा जहाँ तक उसको कुरान याद होगा। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। और जब आप इल्म लेने आते हैं तो सारी मखलूक आपके लिए दुआएं करती है। इब्ने माजा की रिवायत है, मछलियाँ पानी में, चींटियाँ बिलों में और परिंदे फिजाओं में कुरान पढ़ने वाले के लिए दुआएं करते हैं। जब अल्लाह ने आपको इतना प्यारा मुकाम दे दिया तो अब इसके बाद जिम्मेदारी क्या? नंबर एक, अल्लाह का शुक्र, बी थैंकफुल। आपको दूसरों से ज़्यादा मिला। हमारे कल्चर में हर बंदा हाफिज नहीं होता, और किसी दौर में भी हर एक नहीं रहा। ये तो अल्लाह के नबी का दौर था कि तकरीबन हर सहाबी ही हाफिज कुरान भी था। दूसरी जिम्मेदारी जो इन बच्चियों पे ख़ास तौर पे और हम सब पे आम तौर पे आती है कि अपने माँ बाप का अदब और एहतराम। जिन्होंने इतनी मेहनत से आपके पढ़ने के लिए रास्ते बनाए, ज़रूरियात पूरी की, और फिर जो कुछ भी माँ बाप करते हैं। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि अपने उस्तादों का अदब। जिन उस्तादों ने आपकी मदद करके आपके सीने में ये कुरान डाल दिया, तो पहली बात है दिल से उनके शुक्रगुजार होना, बी थैंकफुल होना। اور ماں باپ اور استاد کا مقام ایک ہی ہے. وجہ کیا ہے کہ ماں باپ دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے, استاد آپ کو اٹھا کر اوپر لے کر جاتا ہے, آپ کی تعلیم اور تربیت کرتا ہے. کبھی اپنے استادوں کے بارے میں برا نہ سوچیں, کبھی ان کی برائی نہ کریں, اور ہمیشہ اپنے آپ کو ان سے چھوٹا سمجھیں کہ میں جتنی بھی بڑی بن جاؤں لیکن میں اپنے استادوں سے آگے نہیں جا سکتی. باادب باخلاق اچھے طریقے سے رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنی دولت سمجھیں. آج کے بعد اس سے تعلق کم نہیں ہونا, زیادہ ہونا ہے. اگر آپ نے چھوڑ دیا دہرانا تو بہت جلدی نکل جائے گا. حدیث میں آتا ہے جیسے اونٹ رسی چھڑاتا ہے نا, رسی تڑوا کے بھاگتا ہے, قرآن بھی ذہنوں سے نکل جاتا ہے. ہر روز اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھنا ہے. اور صحابہ کرام تو 7 دن میں قرآن پڑھ لیتے تھے. آپ کو پتا یہ جو منزل ہے یہ کیا ہے, 7 منزلیں نا, پورے ہفتے کا قرآن ہے. وہ ایسے کیسے پڑھ لیتے تھے, ہم سے کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اللہ کے نبی ایک نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ شروع کرتے ہیں, پھر سورۃ نساء شروع کر دیتے ہیں, پھر سورۃ آل عمران شروع کر دیتے ہیں, ہم سے کیوں نہیں اتنا پڑھا جاتا؟ اس کو سمجھیے گا ایک مثال سے. آپ دیکھیے کہ جب گاڑی میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد گاڑی روڈ پہ نکالتے ہیں, چلاتے ہیں. جب گاڑی خوب چلتی ہے تو پیٹرول کم ہو جاتا ہے نا, تو پھر آپ کو دوبارہ پیٹرول پمپ پہ جا کر گاڑی میں پیٹرول ڈالنا پڑتا. اگر کوئی گاڑی میں پیٹرول تو ڈال دے لیکن گاڑی چلائے نہ, تو کیا ہوگا؟ پیٹرول کم ہی نہیں ہوگا. مثلاً 2 دوست ہیں یا 3 دوست ہیں, ایک پیٹرول پمپ پہ ملے, سب کے ایک ہی جیسی گاڑی ہیں, ایک برانڈ نیو گاڑی یعنی جس کا ایک ہی جیسا مائلیج ہے, ٹینکی فل کرائی چلے گئے. ایک مہینے کے بعد دوبارہ ملے اسی جگہ, سناؤ بھائی کیسا رہا؟ ایک کہتا ہے میں تو اس دن کے بعد آج آیا ہوں, پورے مہینے میں میں نے ایک بھی بار پیٹرول نہیں لیا اور آج ختم ہوا تو آج آ رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے اچھا نہیں میں تو 15 دن بعد بھی آیا تھا. تیسرا کہتا ہے کمال ہے تم اتنا کام استعمال کرتے ہو, میں تو ہر ہفتے آیا ہوں. اب مجھے بتائیے تینوں میں فرق اس بات کا, پہلے نے کم چلائی, دوسرے نے تھوڑی زیادہ چلائی, تیسرے نے بہت زیادہ چلائی. جب پہلا پیٹرول استعمال ہو جاتا ہے نا تو مزید ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو لیجیے اپنے اس قرآن پہ. صحابہ کرام اتنا زیادہ قرآن کیوں پڑھ لیتے تھے؟ کیونکہ وہ قرآن پاک پر ساتھ ساتھ عمل کر رہے ہوتے تھے, قرآن کو عمل میں ڈھالتے تھے. یہ جو بات ابھی کہی نا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اس کے اگلی ہی سورت آپ دیکھیں تو یا ایھا المدثر قم فانذر. سورت مزمل میں قیام اللیل ہے اور سورت مدثر میں قیام فی النہار ہے. ادھر رات کو اللہ سے لینی ہے گائیڈ لائن, ادھر لوگوں کو جا کر دینا ہے. کیا پتا چلا کہ اس قرآن پر آپ جتنا عمل کرتے جائیں گے آپ کا اس کو اور لینے کو دل کرے گا. آپ اس کو جتنا یوز کریں عمل میں لائیں گے اتنی زیادہ آپ کے اندر اس کی طلب پیدا ہوگی. پچھلا کھانا ہضم نہ ہو اور کھانے کو دل کرتا, چاہے آپ کی پسند کی چیز کیوں نہ رکھی ہو, آگے نہیں کھاتے آپ, دل ہی نہیں کرتا, آپ کہتے ہیں بھوک نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن کی بھوک لگے تو پچھلے قرآن پہ عمل کیجئے. عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس قرآن کو ہمیشہ نظر میں رکھیں. ایک چیز اور جو بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے قرآن کو حفظ کرنے کے بعد, وہ کیا ہے؟ طہارت. سوچ کی طہارت, جسم کی طہارت, تزکیہ. جسم پہ اگر گندگی لگ جائے, آپ وضو کا خیال نہیں کرتے, باتھ روم میں جاتے ہیں تو چھینٹے پڑتی ہیں, آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے نہیں دھوتے, ناخن نہیں کاٹتے, لمبے لمبے ناخن رکھے ہوئے آپ نے, تو آپ بتائیے کہ کیا یہ قرآن آپ کے فائدے کا ہوگا؟ مطلب صاف پانی ہے, گلاس گندا. اسی طرح پھر دل کو بھی صاف رکھنا ہوتا ہے, کینے سے, بغض سے, حسد سے, رقابت سے. کیوں؟ کہ دل میں غلط چیزیں نہیں آئیں گی. اب آپ کے دل میں غیر کی محبت ہے, مثلا جوان ہوتے ہی خیال آنے لگتا ہے کہ مجھے کسی سے محبت چاہیے, کسی کو میں پسند کروں, کسی لڑکے سے باتیں کروں, کسی سے یہ کروں. اب آپ کسی لڑکے سے بات کریں اور یہ کہیں کہ میری دوستیں بھی تو کرتی ہیں نا, تو آپ کا دل گندا ہو گیا. اور جو ہی دل گندا ہوگا نا, قرآن دل سے بھاگے گا. امام شافعی کے کچھ شعر ہیں جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ان علم نور, علم نور ہے, اور اللہ گندے دل میں, گناہگار دل میں یہ نور نہیں بھرتا. ٹھیک ہے, تو سوچو کی پاکیزگی. پھر اگلی چیز نظر کی پاکی. बस आप देखिए, आप कहते हैं कि सब फिल्में देखते हैं तो मैं क्यों ना देखूं, मैं क्यों ना देखूं, सोचिए। अब आप कहते हैं कि सब देखते हैं ड्रामे तो मैं क्यों ना देखूं। सब लड़कियां गुलूकारों अदाकारों के पोर्ट्रेट्स लगाकर घरों में रखती हैं, फाइल कवर्स है, मैं क्यों ना रखूं। तो आप फौरन सोच लें कि मेरे सीने में कुरान है। जब कुरान मिल गया, नेमत मिल गई, तो मैं उसकी ना कदरी क्यों करूं। तो बस आपने नजरों की हिफाजत करनी है। कुरान पढ़ने वाला अपनी नजरों को गंदी जगहों पर डाल नहीं सकता। सोच को, जुबान को, क्या वो जुबान जिससे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन जैसी खूबसूरत आयतें निकले, क्या उस जुबान पे गीबतें आएंगी, चुगलियां आनी चाहिए? वहां कोई गंदी बातें, बेहुदा बातें होनी चाहिए? तो क्या पता चला कि आप कुरान को अपने सीने में लेकर असल में अपने नहीं रहे। अब आपने इसके वजह से अपने आप को बचाना, कीमती हो गए ना। अब देखिए, कभी गवर्नमेंट ने कोई बहुत कीमती डॉक्यूमेंट से एक जगह से दूसरी जगह भेजने हो, या कोई बड़ी शख्सियत है, कोई सदर वजीर कोई भी है, तो आगे पीछे गाड़ियां होती हैं, पुलिस की गाड़ियां, सायरन हो रहे, फौज जा रही, क्यों जी इनको इधर से उधर लेके जा रहे हैं। तो आप तो उससे बहुत कीमती हैं। अब आप आम लोग नहीं हैं। आपको अल्लाह ने कुरान देकर आपको दूसरों से नुमाया कर दिया। हर आपके अमल को लोग देखेंगे और कहेंगे अच्छा, ये कुरान पढ़ी हुई है। जैसे हमारे साथ लोग अक्सर दुख सुख करते हैं मशवरे के लिए और गाइडलाइन के लिए। सबसे ज्यादा मुझे सदमा कब होता है, एक माँ आती है, कहती है मेरी बेटी की शादी हुई, वो तो इतना खराब लड़का निकला। क्यों, क्या हुआ? उसकी तो दूसरी लड़कियों से दोस्ती है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने शादी करने से पहले नहीं देखा? कहती हाफिज़े कुरान समझ के दी थी, वो तो हाफिज़े कुरान था, पता चला नमाज भी नहीं पढ़ता। फिर मैं वहां रुक के उनको कहती हूँ कि काश आपने हाफिज़े कुरान लफ्जों के हिफ्ज़ को ना समझा होता। आपने देखा कि क्या वाकई वो कुरान के मज़ामीन की भी हिफाजत करता? सूरह तौबा में अल्लाह ताला मोमिनीन की और मुनाफिकीन की सिफात का तकाबुल करते हैं, तो उसमें एक सिफत क्या है, युहाफिज़ूना लिहुदूदिल्लाह, ये अल्लाह की हदों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह के दीन की हिफाजत, अल्लाह के दीन की हदों की हिफाजत कौन करेगा जिसको दीन समझ आएगा? तो फिर अगली बात यह है कि कुरान को हिफ्ज करना फर्ज नहीं था, आपने कर लिया। अब एक चीज फर्ज है, इसको याद रखना, समझिएगा। एक लफ्ज आप बोलते हैं कि मैं अल्लाह को याद कर रही थी, फज़कुरून यज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूंगा। एक जुमला देखिएगा उर्दू में, अल्लाह का जिक्र करना और चीज है, अल्लाह को याद करना और चीज है, और अल्लाह को याद रखना और चीज है। फर्क समझ गए? याद करना क्या, कभी कभी आप याद करते हैं, आप कहते हैं हाँ मैं आपको याद कर रही थी, हाँ मुझे आपका ख्याल आ रहा था, कहते हैं ना। और अगर आप कहें कि आपको याद किया था, नहीं क्यों, भूले ही नहीं। हाफिज़े कुरान ने कुरान के लफ्जों को कभी कभी याद नहीं रखना, उसने हमेशा याद रखना। और याद रखिए कि कुरान पढ़ते पढ़ते बड़ी दफा भूल लगती है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो कुरान पढ़ते पढ़ते भूल जाए तो वो ये ना कहा करे कि मैं कुरान भूल गया, बल्कि ये कहे कि मैंने कुरान भुला दिया। जितना आप गलत चीज़ों में जाएंगे उतना कुरान बदलता है, अल्लाह ले लेगा वापस। हदीस में आता है कि क़यामत के करीब जब लोग गुनाहों में बढ़ जाएंगे, हाफिजों के सीनों से कुरान निकल जाएगा, अरबी के लफ्ज़ जो कुरान के सफ़ों में आपको दिखते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आपके ऊपर मेहनत फ़र्ज़ है, अब आपने इसको भूलने नहीं देना। इमाम शाफी से किसी ने आकर पूछा कि मैं जो याद करता हूँ वो भूल जाता हूँ, क्या करूँ? कहने लगे गुनाहों को छोड़ दे, क्योंकि जिस तरह तुम किसी गंदे बर्तन में नहीं खाते ना, इस तरह कुरान गंदे सीने में नहीं ठहरता। अल्लाह अकबर। फिर एक और चीज़ इन में रखिए कि कुरान को कभी मुश्किल ना कहें, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। चार दफ़ा अल्लाह ताला कहते हैं वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। नसीहत के लिए कुरान बहुत आसान है, ठीक है याद लफ्ज़ों में करना ज़रा सा मुश्किल लगता है। फिर इसी तरह से आप देखिए, आपके टीचर्स ने आपकी एक सब की रखी होगी, मंजिल है, कब पढ़ना है। अब कभी कभी क्या होता है कि उस्ताद नहीं पूछते, माँ ने नहीं पूछा, आपने अपनी ईमानदारी से सुनाना है। मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ बच्चियों को, अपना कुरान खुद रिकॉर्ड करें। हाथों में फ़ोन है, हर फ़ोन में रिकॉर्डर मौजूद है आजकल, रोज़ अपना सबक रिकॉर्ड करें और बाद में उसको सुने। और साथ ही साथ फिर किसी एक अच्छे कारी को चूज करें जिसके साथ आपकी टोन मिलती है, यानी उसके साथ साथ चले, फास्ट है तो फास्ट आप उसके साथ पढ़ें। पहली दफ़ा जो कुरान पढ़ा जाता है ना, बस वो फिक्र ही होता है कि लफ्ज़ याद हो जाए। कई गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती है एक दफ़ा कुरान हिफ्ज करने के बाद, आराब का फ़र्क होता है, लफ्ज़ों का, मुहारिज का। तो एक जिम्मेदारी अब ये है कि अपनी तजवीद को फिर दोबारा ज़रा सा चेक करें, और उसका अमल के साथ बेहतरीन तरीका क्या है कि आप किसी भी एक अच्छे कारी को चूज़ करें और उनके साथ साथ पढ़ें, उनका भी सुनें और फिर अपना रिकॉर्ड कर करके सुनें। जितनी अच्छी गलती आप अपनी निकालेंगे उतनी किसी और की नहीं निकालेंगे, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेहतरी आती जाएगी। यानी ये भी सिर्फ आप रास्ते पे चढ़े हैं, अभी मंजिल नहीं मिली, मंजिल बहुत साल बाद मिलती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि आपका अपने घर वालों से, छोटे बहन भाइयों से ताल्लुक़, ये भी अब बड़ा अहम है। हम कोई अच्छा काम कर लेना, मसलन जैसे कुरान याद किया है, कुरान सीख लिया लफ्जी तर्जुमा, लोग अच्छी बात करें ना करें, जब ज़रा हमारे अंदर कोई कमी देखते हैं तो क्या कहते हैं, हाफ़िज़ कुरान होके झूठ बोल रहा। लोग कहते हैं ऐसी बातें, आपको पता, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे थे, मैंने नहीं अब दाढ़ी रखनी। भाई आप दाढ़ी रखे हुए को देखें और साथ झूठ बोलना छोड़ दें तो अब लोग आपको क्रिटिकली देखेंगे। कुरान को बातें नहीं करवानी, जैसे बेटियों को माएँ कहती हैं ससुराल में जाके मुझे बातें ना करवाना, आप इस कुरान को पढ़कर आप कुरान को बातें ना कराना। एक दुआ हमेशा मांगती हूँ, आप भी मांगा करें, क्या मेरी वजह से इस कुरान की बेइज्जती ना कराना, मुझे इस कुरान का और इस कुरान को मेरी इज्जत का जरिया बना दे। इसकी लाज रखनी है, स्कूल में किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, चीटिंग नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, फजूल बातें नहीं करनी, बेकार एक दूसरे के नाम नहीं रखने, ऐसे नहीं करना कि जिससे लोगों को ये शक पड़ जाए कि कुरान पढ़ा तो है लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ इनको। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दीन पे अमल आएगा। और अगर मैं अमली बात करूं, जिससे प्रैक्टिकल बात हो, तो वो यही है कि अब नियत करें कि हमने इसके लफ्ज़ों को याद करना। अगर आप बच्चियों को मौका मिले तो आप याद करेंगे लफ्ज़ी तर्जमा, यानी अगर आपसे इस वक्त कोई भी सूरत पूछी जाए तो आपको शायद घबराहट हो कि नहीं याद होता, मुझे भी नहीं याद होगा। इवन पूरा कुरान पढ़ा हुआ बंदा हर वक्त नहीं कुरान पढ़ सकता, लेकिन बेटा अगर आपने उर्दू में इसको समझ लिया तो आप पढ़ लेंगे। जैसे अगर आप मुझसे कहें कि आप हमें कुरान की फलां बात बताएं वो किधर लिखी है, तो मैं बता दूंगी क्योंकि मैंने उर्दू में याद किया। आप माओं को कहूंगी, देखिए ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको आज नहीं दिखेगी। आप सोचिए जरा इमाम बुखारी को, आज उनकी माँ दुनिया में है, बाप है, खुद इमाम बुखारी हैं, नहीं है ना, लेकिन कोई मदरसा कोई मस्जिद ऐसी नहीं होगी जिसमें सही बुखारी ना हो। क्या इमाम बुखारी के उस्तादों का अजर कोई नाप सकता? इमाम बुखारी के माँ बाप का अजर कोई गिन सकता? हम तो उनको देखते हैं ना जो कर रहा होता है वो काम, इमाम बुखारी नहीं, आप वो देखिए जिन्होंने उनकी मदद की। तो अगर आज आप इस बात की नीयत कर लें, थोड़ी सी मेहनत है, आज के दौर में अपने बच्चों को, और मैं आप सब माओं को कहूंगी अपने समेत, ये माओ की जिम्मेदारी है, फर्ज है उन पर, 15 साल की उम्र से पहले पहले, मैं इसको और भी पीछे ला सकती हूँ, बलूगत से पहले अपने बेटों और अपनी बेटियों को कुरान का तर्जुमा याद करवा दें। मैं नहीं कहती बहुत लंबी तफसीरों में लेके चलें, आप उनको फिकी बातें लंबी चौड़ी ना बताएं, सिर्फ उनको कुरान खोल कर उसको याद कराना दें। आप देखिए कि अरबी का कुरान आपके पास कोई भी हो, आप में से मेरे में से कौन इस काबिल है कि उसको उर्दू में पढ़ सके? और इनको तो चूंकि अरबी भी याद है, यकीन करें अगर दूसरों को 2 साल लगते हैं ना, इनको 1 साल लगेगा, क्योंकि जब भी कोई बुक पढ़ते हैं मैथ की तो समझ के पढ़ते हैं ना, तो कुरान तो आपको समझ ही नहीं आता। अगर रह जाता कोई आपको रोक ले, अच्छा सूरत मोमिन की आयत नंबर 20 के अंदर क्या है, आपको नहीं समझ आएगा ना, तो आपने सीखना है इंशाल्लाह, नमाजें जिंदा हो जाएंगी। माँ बाप तो दूर खड़े होते हैं जब कोई बुरे गुनाह नेकी का मौका आता है, तो कुरान ही आपको रोकेगा। हजरत उमर कहा करते थे अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, कुरान उनको सब कुछ सिखा देगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात मेरे भी लिए थी, आपके लिए भी थी, और एक बहुत बड़ी बात है जो आप सबके लिए और ऑफकोर्स हम सबके लिए भी मस्ट है, नमाज नहीं छोड़नी, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं सब, फजर पढ़ते सारी पढ़नी है। देखिए नेमत की कदर करनी है ना हमने, हम में से बस लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को जो पढ़ा दिया है तो अब हमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, एक रिवायत है, खुलासा सिर्फ बता देती हूँ, क़यामत के दिन हाफ़िज़े कुरान को हक दिया जाएगा, सिफारिश करें। लेकिन जो माँ है, बाप है, या जो भी क्लोज सर्कट लोग थे, उनमें खुद भी तो कुछ सलाहियत हो। मसलन एक माँ है, वो बेनमाजी थी, शिर्क पे थी, बिदत पे थी, या कुछ भी थी, अपने किसी बड़े ही बुरे अमल की वजह से जहन्नुम में फेंक दी गई। अल्लाह हाफिज़ा बेटी या हाफिज़ बेटे को बुलाएगा, फरिश्तों को कहेगा जाओ इसकी माँ को जहन्नुम से निकालो। और रिवायात से पता चलता है कि जहन्नुम के अजाबों ने शक्ल बदल दी होगी, जैसे सूज पड़ जाती है, सोजन, और जो चेहरे पे दुख तक, यानी उसकी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं ना। अब क्या हुआ उसके बाद? अल्लाह कह रहे हैं कि ये तुम्हारी माँ है, इसकी सिफारिश करो तो इसको हम जहन्नुम से निकाल देंगे। तो वो कहेगा नहीं, ये तो मेरी माँ ही नहीं है, मेरी माँ तो बड़ी खूबसूरत थी। यानी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी, दो चार बार की बात के बाद उसकी माँ को दोबारा आग में डालकर उसको जन्नत में ले जाया जाएगा। अल्लाह ना करे हम में से किसी के साथ ये मामला हो। तो इसके लिए खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। आप सब भी जो आज आए हैं, उनको भी मैं यही मैसेज दूंगी अपने समेत कि हाफ़िज़े कुरान अगर आप नहीं बन सकते अभी इस उम्र में, छोटी छोटी सूरतें याद कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कोर्सेज बच्चियों को ऑफर किए जा रहे हैं, तो इसमें हम कुरान का सिलेक्टेड हिस्सा भी याद करते हैं, दुआएं सारे कुरान की, तो कितना हिस्सा तो वही हो गया। सूरत बकरा की आखिरी आयतें, सूरत आले इमरान की आखिरी आयतें, सूरत मुल्क कर लीजिए, सूरत सजदा कर लीजिए, ताकि रोज़ खोल के कुरान पढ़ने की सुस्ती ना हो। बिस्तर पर लेटे लेटे आप पढ़ सकते हैं। और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हर वक्त दिन ब दिन इस किताब से, इस कुरान से करीबी का हो, ना कि हम दूरी का हों। जज़ाकल्लाह खैर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।